हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 8। पूरी श्रद्धा भाव प्रेम के साथ गुरुजनों इष्टदेव और भगवान को प्रणाम करेंगे ताकि इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने और जीवन में उतारने के योग्य हो सकें और इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय। चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले। स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश श्रीरूपम् साग्र जातं सहकर्ण रघुनाथन्वितं तं सजीवं। सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहकर्ण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण हमें वो अंतिम गुण, तीन गुण है ना, जैसे उसमें से अंतिम जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक गुण है उसके विषय में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 5 में हमें बताया था, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निभत्नन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम्। यानी भौतिक प्रकृति में जब जीव आ जाता है तो भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। इसमें तीन गुण होते हैं, कौन कौन से? सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। अब कैसे बनता है वो भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 6 में बताते हैं। तत्र सत्वम निर्मल प्रकाशकम् मनामयम् सुखसंगेन भत्नाति ज्ञानसंगेन चानक। हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों से की उपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से भी मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बन जाते हैं, क्योंकि वो सुख और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए बनते हैं और बार बार आना पड़ता है। और आगे 7 ने कहा, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्ण संग समुद्भवं तन्निभत्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है? आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। इसी के कारण यह देहदारी जीवात्मा को आकांक्षाएं हो जाती हैं, तृष्णाएं हो जाती है, तो किससे बांधते हैं? सकाम कर्मों से बांधते हैं। अब कल ये स्टेटस एक मिला था कि वाकई में जैसे हम लोग ने कहा था कि इस आज आधुनिक युग में कौन सा गुण जो है वो ज्यादातर कौन सा हावी हो जाता है, अतएव सारा संसारी न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है, यानी रजोगुण ज्यादा सबके ऊपर हावी हो रहा है। लेकिन जहां तक अभी हम लोग तमोगुण पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सत्वगुण में रहकर कर रहे हैं चाहे रजोगुण में रहकर कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि तमोगुण है। अब ये तमोगुण क्या है और कैसे उत्पन्न होता है, भगवान श्री कृष्ण आज हमें श्लोक नंबर 8 में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निभत्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, ये जो अज्ञान, तमस का मतलब होता है तमोगुण, तू मतलब, लेकिन अज्ञानजम ये उत्पन्न कैसे होता है? अब देखो, सत्वगुण कैसे उत्पन्न हो रहा था? क्योंकि प्रकाश था, ज्ञान था, उससे उत्पन्न हो रहा था। रजोगुण आकांक्षाओं से उत्पन्न हो रहा था, और ये कैसे उत्पन्न हो रहा है तमोगुण? अज्ञान से। अज्ञान, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है पता है? सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। कौन सी स्थिति? कि मैं भगवान का अंश हूँ और जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, अपने स्वरूप को भूल जाता है। सबसे बड़ा अज्ञान यही है। और जो कार्य जैसे तृष्णा और आकांक्षाएं कैसे उत्पन्न हो रही, क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम ये जीव आत्मा है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर से रिलेटेड सारी तृष्णाएं होती है ना, आत्मा से रिलेटेड कोई तृष्णा हमें नहीं बांधती है। तो ये रजोगुण क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए, यानी कि तमोगुण के कारण। और सत्वगुण क्यों उत्पन्न हुआ? सत्वगुण में हम ज्ञान और सुख हासिल करना चाहते हैं, किसके जरिए? इंद्रिय तृप्ति के जरिए। सुख क्यों जाएंगे? इंद्रिय को तृप्त करने के लिए ना, अपने आप को देहात्म बुद्धि में रखा, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए अज्ञानता के कारण, इंद्रिय तृप्ति सोची ना। तो इसका मतलब ये है कि सत्वगुण के जरिए भी हम जो कार्य कर रहे हैं उसका कारण भी तमोगुण है, और रजोगुण के जरिए जो भी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोशिशें कर रहे हैं उसका कारण भी क्या है? तमोगुण है। क्यों? क्योंकि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, ये अज्ञान किधर से आया है? तमोगुण के कारण आया है। और क्या कर रहा है भगवान आगे बता रहे हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। भगवान कहते हैं वो जो समस्त देहिनां, सर्वदेहिनां मतलब समस्त देहधारी जीव जितने भी हैं, जिनको यहाँ पर संसार जीव को प्रकृति, जिस जिस प्रकृति के अंदर डाला गया है, जिस जिस शरीर के अंदर, देह के अंदर डाला गया है, वहां आकर वो मोहित हो जाता है। जिसको जो बनाया गया वो अपने आप को वही समझ रहा है। जैसे मनुष्य क्या समझ रहा है कि मैं ये मनुष्य हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, लेकिन वो भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ। बंदर को बना गया, बंदर के अंदर डाल दिया तो वो समझता है कि मैं बंदर हूँ, और अगर कॉकरोच के अंदर डाल दिया तो बोलता है मैं कॉकरोच हूँ। सुअर को बोलो, सुअर छोड़ तुम ये गंदगी है नहीं खाओ, तो बोलेगा नहीं मैं तो सुअर हूँ, मैं यही काम करूंगा। तो मतलब जिसके अंदर डाला तो तमोगुण के कारण देह, देखो कितना भगवान ने सुंदर शब्द लिखा है, मोहनम सर्वदेहिनाम, कि सारे देहदारियों को मोहित कर देता है। कौन? तमोगुण। क्यों वह मोहित कर जाता है? क्योंकि वो अज्ञानता प्रदत्त है और अज्ञानता ही समस्त कार्यों का कारण है। ये अज्ञानता अगर ये ना होती ना, तो समझो कि हम कभी भूलते नहीं भगवान को, अपने स्वरूप को नहीं भूलते, और फिर हम सदैव भगवान की भक्ति करते, भगवान के दासत्व में रहते। लेकिन ये अज्ञानता ही जड़ है। और हम पहले तो ये समझते हैं ना कि देखो हम फिर भी रजोगुणी और सत्वगुणी हैं, लेकिन तमोगुणी नहीं है। लेकिन संसार में जो भी देहधारी देहात्म बुद्धि में है वो तमोगुण में है, क्योंकि वो भूले हुए हैं ना अपने स्वरूप को। भगवान ने तभी तो कहा तमस्त्वज्ञानजं मिथ्ये मोहनम सर्वदेहिनाम। अब ये बांधते कैसे, आगे भगवान बताते हैं। प्रमादालस्य निद्राविस तन्निभत्नाति। प्रमाद, प्रमाद किसको बोलते हैं? प्रमाद का मतलब होता है पागलपन। पागल ही है ना, पागल का क्या मतलब है? अब देखो पागल के क्या मतलब होते हैं। एक दो आदमी रास्ते से जा रहे हो और इसमें से एक जो है ना वो ऐसे ही जा रहा है और दूसरा बोले कि मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री हूँ, सब लोग आ जाओ मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को कुछ कुछ है ना रिस्ट्रिक्शन दूंगा, अभी मैं आपको जो जो बताऊंगा आप लोगों को करना है, जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। यानी कि वो होगा प्रधानमंत्री नहीं और बोल रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो आप लोग क्या बोलोगे? मतलब एकदम अच्छे तरीके से बोल रहा है, एकदम रिसेंट तरीके से बोल रहा है, चेयर पे बैठा हुआ है और जोर जोर से बोल रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, आ जाओ मैं भाषण दे रहा हूँ सुनो, तो सब लोग आते जाते क्या बोलेंगे? छोड़ो बेचारा पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि अपने अस्तित्व को भूल गया है, वास्तव में प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन बोल रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसका मतलब है पागल। पागल का मतलब होता है कि आप अपने स्वरूप को भूल जाओ। और वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ संसार में हम सब आत्मा है, ये तो शास्त्र का, वेदों का सबसे पहला स्टेटमेंट है कि हम ये शरीर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बोलने से पहले एक लाइन बोली, भगवान श्री कृष्ण ने बताया दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11 में, अशोचानन अशोचस्तम प्रज्ञा वादा शासते गदासो न गदासो नानो शोचंती पंडिता। भगवान कह रहे थे कि आप बात कर रहे हो शरीर की और अकलमंद लोग तो शरीर के बारे में गता सुन गता सुन, आप बातें कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि आप अकलमंदों की तरह बातें कर रहे हो और पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य ही नहीं है। यानी कि हम भी सदैव बातें करते ना, बड़ी बड़ी जो इतनी एजुकेशन अपनी झाड़ते हैं देहात्म बुद्धि के कारण, तो वो सब क्या है? भगवान उसको कह रहे हैं प्रमाद है, पागलपन है, क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। जिस तरह वो प्रधानमंत्री नहीं था लेकिन प्रधानमंत्री की तरह बात कर रहा था और अपना झाड़ रहा था, लेकिन उसको तो पागल ही कहेंगे। उसी तरह से हम लोग ये शरीर नहीं है और शरीर से रिलेटेड किसी चीज को बात करते हैं तो पागल कहा गया शास्त्रों में। और आगे गया प्रमाद आलस्य, आलस्य कहते सुस्ती को, निद्रा भी यानी नींद के द्वारा। ये नींद को शास्त्रों में ना दो चीजों से बताया गया, एक तो नींद जो सोने वाली होती है वो भी बताया गया, लेकिन नींद बताया गया अज्ञान को। यानी कि ऐसे कभी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना जीव जागो जीव जागो, अब वो ऐसा नहीं है कि कोई सो रहा है उसको जगा रहे हैं, हाँ बेटा जाग जाओ सुबह होगे, वो जागे हुए मनुष्यों को बोल रहे हैं कि आप जागो, ये जो माया पिशाचनी है उसकी गोद के अंदर नहीं सो, माया ने आपको भुला दिया है कि आप वास्तव में भगवान के दास हो, इसलिए जागो नींद से जागो। तो ये जो अज्ञानता की नींद है जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, हम जीव आत्मा हैं, हमारा एकमात्र कार्य भगवान का दासत्व है, वो भूल गए हैं, वो नींद यहाँ पर कही गई है। निद्रा भी तत् भगवान ने कहा प्रमादालस्य निद्रा भी सन्निबध्नाति भारत, तत् मतलब वह निबध्नाति मतलब बांध देता है भारत। भगवान ने कहा हे भरत पुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। यानी वो भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, क्यों? अज्ञानता और तमोगुण के कारण। और इस गुण के प्रतिफल पागलपन, पागल हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने अस्तित्व को, प्रमाद आलस्य तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बताएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। तू बताया गया ना, जैसे तस्मात् त्वज्ञान, तू बताया गया इसे। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत ही विचित्र गुण है। मतलब ये बहुत ही, तू बताया गया ना, लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन जो तमोगुण है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है, तो ये विचित्र है, उन दोनों से अलग है, इसलिए भगवान ने यहाँ पर तू शब्द बोला। देखिए आपको नजर आ रहा है ना, देखो यहाँ पर त्व लिखा है, तमस त्व ज्ञान, हम इसको त्व पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप ये वर्ड्स मीनिंग में देखो, तमो मतलब तमोगुण और तू मतलब लेकिन। लेकिन जैसे अब दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं तीन फ्रूट्स के बारे में, ये ऑरेंज है, ये स्ट्रॉबेरी है, इनका खट्टा मीठा टेस्ट होता है, लेकिन ये जो साथ में मैंगो रखा हुआ है, लेकिन मतलब वो विचित्र है, अलग है, तो उसके लिए बता रहे तमोगुण ये है। यह सत्वगुण के सर्वथा विपरीत है, यानी कि एकदम अपोजिट है। सत्वगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। यानी कि सत्वगुण में क्या होता है, ज्ञान होता है, हम ज्ञान हासिल करते हैं और अपने अस्तित्व को समझ लेते हैं, तमोगुण एकदम अपोजिट है। जो भी तमोगुण के फेरे में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि जब आप अपने आप को या किसी को रियलिटी से नहीं समझ पाते, उनकी असलियत को नहीं समझ पाते, तो वह पागल हो जाते हो, समझो पागल है, और पागल यह नहीं समझता है कि कौन क्या है, वह प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। अब क्योंकि अपने अस्तित्व को भूल गया तो वो कार्य करेगा कौन से, देहात्म बुद्धि के हिसाब से, जैसा जैसा शरीर मिला है उसके हिसाब से वो कार्य करेगा, और अब अपने शरीर को खुश करने के लिए करेगा करेगा, तो फिर क्या होगा, ऊपर जाने की वजह से प्रगति नहीं करेगा बल्कि अधोगति में और भी खराब खराब योनियों में उसको जन्म लेना पड़ेगा। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई, शास्त्रों में कैसे गया, कहा गया, वस्तु यथात्म ज्ञान ज्ञानावरकम, वस्तु यथात्मा अज्ञानावरकम, यानी कि जो अज्ञान होता है उसके कारण यथारूप में जो वस्तुएं होती है, असलियत में जो होती हैं, विपर्यज्ञान जकम अज्ञान जनकम, यानी कि अज्ञान के कारण ऐसा होता है। तमह, तम इसका मतलब यह है कि अज्ञान के वशीभूत जब हो जाते हैं, कोई मनुष्य हो जाता है, उसकी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता, तो अब देखो किसी के पास अज्ञान हो गया तो वो अज्ञान, हम लोग ज्ञान की वजह से ही चीजों को सही तरह से समझ सकते हैं ना, अज्ञान हो गया तो किसी चीज को समझेंगे ही नहीं, और अज्ञान किसके कारण होता है, तमोगुण के। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छी मिसाल देंगे तो हमें अच्छा समझ में आएगा। उदाहरणार्थ प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा, मनुष्य मृत्यु है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु द्रोह है। यानी कि हर किसी को पता है कि कोई भी मनुष्य ऐसा संसार में पैदा नहीं हुआ, कोई भी जीव ऐसा नहीं पैदा हुआ जो कि पैदा होने के बाद मरे नहीं, अतएव मृत्यु द्रोह है। यानी कि आपका अगर कोई ना परफेक्ट फ्यूचर है तो क्या है, जो रियल फ्यूचर है वो क्या है, मृत्यु है, और मृत्यु की तैयारी नहीं करते आप। देखो किधर भी जाने का होगा ना, आप जैसे अभी वेकेशन आएंगी, सब लोग अभी से तैयारी करेंगे कि भाई वेकेशन से मुझे यहाँ जाना है, इधर घूमने जाना है, और पहले से ही शॉपिंग करेंगे कि भाई वहां पर मुझे ये चीजों की आवश्यकता होगी, मैं इतने दिन के लिए जाऊंगा तो इतने दिन रहने के लिए मुझे ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन मृत्यु ध्रुव है, वो फ्यूचर जरूरी नहीं है कि भाई वेकेशन तक हम लोग जिंदा रहते हैं नहीं रहते, मगर मरना जरूरी है, तो उसके लिए तैयारी कोई नहीं करता कि भाई मरने के टाइम पर जब यमदूत आएंगे और मुझे ले जाएंगे तो फिर मुझे ये चीजें जरूरी वहां पर चाहिए होंगी, तो मैं पहले भगवान का नाम जप कर लूं, भगवान की सेवा अर्जित कर लूं, शास्त्र अध्ययन कर लूं, गीता समझ लूं, भागवत समझ लूं, लेकिन इसके लिए कोई भी नहीं सोचता। आज कितने लोग हैं जो अपने शास्त्र को सीरियस ले रहे हैं। अब देखो शास्त्र ही बताएगा ना हमें कि हम क्या हैं, जो भगवान ने ये बुक भेजी है भगवान ने हमारे साथ, तो फिर उसी में सब कुछ हमारे बारे में लिखा हुआ है, तो हम लेकिन उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो फिर क्या है, ये क्या है, पागल बनाई है ना। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते हैं। वो खाली श्रम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किसके लिए, धन अर्जित करने के लिए। सारे लोगों का 99.9% जो समय होता है कैसे धन अर्जित करूं, बस इसी में गुजरता है। क्यों? क्योंकि पागल हो गए, अपने रियलिटी को भूल गए हैं और आत्मा की कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं, आत्मा की कोई चिंता नहीं कर रहे, कठोर श्रम कर रहे हैं कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं। यह पागलपन ही तो है। श्री प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये पागलपन नहीं है तो क्या है, अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। आलसी का मतलब पता है क्या होता है, हम लोगों को क्या लगता है, सुस्ती ना, लेकिन ऐसा नहीं है। सुस्ती का मतलब भी दो तरह की सुस्ती होती है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया 1.1.9 में, सॉरी 1.1.10 में, यानी पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 10 में बताया, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जन मंदा मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ह्युपद्रिता। मंदा का मतलब होता है आलस, के कलयुग के लोग जो होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं आलसी का मतलब ये है। अब देखो देखा जाए तो कलयुग के लोग कितने कर्मठ हैं, कितने ज्यादा एक्टिव हैं, इतनी ज्यादा इन्वेंशंस जितनी हुई है कलयुग में, जितनी इजादात हुई है, जितना प्रगति हुई है भौतिक कार्यों में, उतनी और किसी ना, पहले मोबाइल नहीं था, पहले कंप्यूटर नहीं था, पहले इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीजें जो पहले युगों में या फिर पहले यहाँ, अब जैसे जैसे प्रगति हो रही है ना देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि आलसी होते हैं। आलसी का मतलब होता है कि राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, यानी कि भक्ति में आलसी होते हैं, अपने अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे, अज्ञानता हावी हो गई है, और जब अज्ञानता हावी होने के बाद पागल हो गए तो पागलपनों में बहुत एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे बताया गया कि वो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाते हैं, अत्यंत आलसी हो जाते, और पागलपन में आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं करते हैं। ऐसे लोग पागल और आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। मैं सबको इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग श्रीमद् भगवद गीता में क्यों नहीं रुचि ले रहे हो, ये भगवद गीता कितनी इम्पोर्टेंट है, ये समस्त शास्त्रों का सार है। आप रोजाना एक श्लोक 24 घंटे में से 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट्स आपको बचा देंगे, आपके जीवन को है ना बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखो मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बताती हूँ, हर क्वेश्चन का जो भी रिप्लाई होता है मैं आपको बोलती हूँ भगवान ने इस श्लोक में इसका रिप्लाई दिया, तो यानी कि भगवत गीता में हर क्वेश्चन का रिप्लाई है, हमारी हर समस्या का समाधान है। लेकिन किसी को आमंत्रण करो, मतलब लोग कहते हैं कि भाई बेचारों को ज्ञान नहीं है, बेचारों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं हर दफा, हम उस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठाते हैं, तो इसमें भगवान क्या क्या कसूर है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र दे दिया, जन्म दे दिया, गुरु दे दिया, सब कुछ दे दिया, और उसके बावजूद भी हम उसमें नहीं रुचि दे रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं, वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते, यानी कि वो अब जो ज्यादा तमोगुण जिनके ऊपर हावी हो जाता है वो रजोगुण की तरह भी सक्रिय नहीं रहते, ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोता है। अब जो आपको नजर आए ना कि जो सो रहे हैं ज्यादा देर तक, वो समझो तमोगुणी है, उनका कुछ नहीं हो सकता। और कितनी देर सोना चाहिए, आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, 6 घंटे ज्यादा से ज्यादा सोना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे आराम से सोता है। जो यहाँ पर आपको नजर आए ना 10-12 घंटे सोते हैं, वो है ना आलसी होते हैं, और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं तमोगुण उनके ऊपर ज्यादा हावी होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनीय बना रहता है, बन जाता है। यानी कि भौतिक द्रव्य होते हैं ना, नशे वाली चीजें होती हैं, और निद्रा, सारा दिन सोना उसको अच्छा लगता है, ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। सारा दिन या तो सोएगा, या तो सुस्ती करेगा, बैठेगा, कोई कार्य। रजोगुणी तो फिर भी एक्टिव रहते हैं ना, कि अपने लिए तो काम करते हैं, शरीर के लिए तो कंटिन्यूअस काम करते हैं, और है ना सत्वगुणी तो वैसे ही एक्टिव होते हैं, अच्छे से ज्ञान वाले काम करते हैं। लेकिन तमोगुणी लोग सुस्त इतने होते हैं कि उनसे होता ही नहीं है कुछ, ऐसे लगते हैं नहीं कर नहीं सकते हम लोग। तो ऐसे लोग जो नजर आए ना, जो ज्यादा सुस्त हो, ज्यादा काहल हो, ज्यादा काम नहीं करें, निद्राजन पर हावी हो, वो तमोगुणी होते हैं। और वास्तव में तो तमोगुणी रजोगुणी भी होते हैं, सत्वगुणी भी होते हैं, क्योंकि अज्ञान ने सबको काबू किया होता है, और तमोगुण का मेन लक्षण अज्ञानता है। आशा है समझ में आ गया होगा। भगवान और भी बहुत कुछ बताएंगे, आप सब साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।